में तो सभी तत्व आध्यात्म में रहते हैं, यहाँ तो पांच तत्व सब होता है। अनाज नहीं मिलता, कभी बहुत ठंडी कभी बहुत गर्मी होती रहती, क्योंकि ये तत्व भी तम प्रधान है ना, पांच तत्व आदि सभी तत्व प्रधान होते हैं और हरेक तत्व से सुख मिलता है। सुख का नाम निशान ही नहीं होता, नाम ही है उसका कर्म। सभी बातें तुम अभी समझते हो, तम प्रधान बन गए थे, अभी फिर तत्व प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। और तो सभी अभियारे में और नीचे उतरते जाते हैं, ये भी विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। जो बाबा तो है सिखलाने वाला, वो तो मंथन नहीं करेंगे, मंथन इनको करना होता है। इनको माने ब्रह्मा को, इनको में दोनों आ जाते हैं, कृष्ण की सूल भी आ जाती है और राम की सूल भी आ जाती है। तो मंथन तो इनको करना होता है, इसलिए इनको बहुवचन में बोला। विचार सागर मंथन करके तुम समझा दो, फूल का तो मंथन बिल्कुल होता ही नहीं है। पुरानी दुनिया याद पड़ती रहती है, बाप कहते हैं देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, ये भी समझते हो। नंबर बार पुरुषार्थ संसार राजधानी स्थापन हो रही, बाप कहते हैं मैं आकर की राजधानी स्थापन करता हूँ, नहीं ज्ञान सुना के चला जाता हूँ फिर राजधानी अपने आप स्थापन होती रहती है, नहीं मुझे आना पड़ता है और सभी को वापस ले जाना पड़ता है। वो लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, कौन लोग, वो धर्म पिता है, वो वापस नहीं ले जाते हैं और न कोई राजधानी स्थापन करके जाते हैं। जैसे सिख धर्म का नानक आया, उनके पिछाड़ी में और आते रहेंगे, उनके धर्म की वृद्धि होती रहेगी, परंतु वो गुरु तो ठहरा है। गुरु किसको कहें, गुरु को साथ ले गए, उनकी क्या महिमा करेंगे। महिमा तो तुम्हारी है, आज सनातन देवी देवता धर्म के हीरो हीरोइन को ही कहा जाता है। हीरो जैसा जन्म तुम्हारे लिए कहा जाता है, तो तुम गिरते भी हो चोटी पर, एकदम नीचे आकर के पढ़ते हो। इस समय तो तुम बच्चों को देवताओं से भी जाग चुके हो, क्योंकि तुमको लाटरी मिलती है। कौन सी लाटरी है, तुमको लाटरी मिलती है, भगवान हमको पढ़ाते हैं, बात तो देवी देवताओं को ही पढ़ाएंगे, देवताएं देवताओं को पढ़ावेंगे, यहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। और तुम आत्माओं को, तुम आत्माओं को परमात्मा बैठ पढ़ाते, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फर्क हो गया ना, ये देवताएं और वो असुर और तुम हो ब्राह्मण, राम राज्य और रावण राज्य, उसको भी तुमने अभी समझा, अभी तुम कितना जीमत पर चलते हो, इतना ही पर पालेंगे। अज्ञान में तो मनुष्य जो करेंगे तो उल्टा ही करेंगे। छोटेपन में पहले सगीर बुद्धि होती है, फिर बालक होती है, 16-17 वर्ष के बाद सगाई कराते हैं। आजकल तो बहुत बंद है, छोटे में पड़े हुए को गोद वाले को भी सगाई कराई देते, फिर उनकी लेन देन चलती रहती। यहाँ तो ये सब बातें होती है, वहाँ तो शादियाँ आदि भी कितनी रायल होती हैं, उनको तो कभी साक्षात्कार कराया। जितना तुम नजदीक होते जाएंगे तो तुम बहुत साक्षात्कार करती है। बच्चों को योग का अभ्यास करना है, अभी बच्चे समझते हैं योग में तो हम बहुत ढीले हैं, ये बात को पहले बुद्धि में थी ही नहीं, याद में रहने के लिए बहुत माथा मारते हैं परंतु रह नहीं सकते, गड़बड़ी भूल जाते हैं। बात समय यहाँ रहने वालों का चार्ट तो बहुत अच्छा होना चाहिए, कहाँ रहने वालों का है, मधुबन में रहने वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, बाहर में तो गोरख धंधे में रहते, यहाँ तो यज्ञ में रहे पड़े हैं, तो चार्ट लिख नहीं सकते। योग कोई नहीं समझते हैं तो चार्ज फिर क्या लिखेंगे। बाप को याद करते करते तुम यहाँ ही तत्व प्रधान बन जाए। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा याद करते हैं। भोजन बनाते हो या कुछ भी करते हो जो बाबा को याद करो। कर्मातीत अवस्था को तो अंत में पाना ही है। अभी कोई की कर्मातीत अवस्था नहीं है। उनसे हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं बाबा नहीं मानेंगे। वही तो लज्जा के मारे चार्ज भी नहीं लेते। सारे दिन में 8 घंटा भी याद नहीं करते। यहाँ मुरली सुनने में याद थोड़ी रहती है। मुरली सुनते हो वो तो तुम धन कमाते हो। याद कहाँ रहती है? याद में तो सुनना ही बंद हो जाए। याद हो जो बाबा बाप की याद हो तो बाप की ही बातें सुनाई पड़ेगी, दूसरे की बातें सुनाई नहीं पड़ेगी। कई बच्चे ये भी याद में लिख देते हैं। क्या क्या बात है? याद में लिख देते हैं जितनी देर मुरली सुनी उसको काय में लिख दिया, याद की चार्ज में लिख दिया। मुरली सुनी लिख देते हैं याद में रही, परंतु ये कोई याद हो रही है? बाप खुद कहते हैं मैं भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। भोजन पर याद में बैठता हूँ, कहता हूँ बाबा आपको अभुक्त है। मैं कैसे कहूँ कि आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे बाबा हमारे साथ हैं तो मुख्य है याद की यात्रा। मुझे की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। याद से ही पवित्र बनना है और आय भी बढ़ती है। ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो हमें याद नहीं है, क्योंकि शिव बाबा तो इसमें था ना। नहीं, मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्या बात है? तो मेहनत है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल ही याद नहीं कर सकते। याद करने वालों की अवस्था बोल चाल बिल्कुल अलग रहती। याद से ही समो प्रधान अवस्था से तत्व प्रधान में आ गई, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुलाई देती है, भूख बनाई देती है, बहुतों की बीमारी उछल पड़ती है। मोह जो पहले कभी नहीं था वो भी प्रकट हो पड़ता है, असमर्थ है। ये बड़ी मंजिल है। कोई लिखते हैं मुरली सुनता था, ये भी याद नहीं था, परंतु बाबा उनको पकड़ेंगे। मुरली सुनना अलग बात है, वो है धन कमाने की बात। उनसे कोई आयु नहीं बढ़ेगी, उनसे तुम पावन नहीं बनेंगे। मुरली तो बहुत चलाते हैं, निर्विकार में भी गिरते रहते हैं देर के देर। तुम्हारे पास सेंटर में तो बहुत ऐसे आते हैं जो विकारी होंगे, परंतु सच तो बतलाते ही। बाबा के पास आते हैं, बाबा समझाते हैं, अगर तुम पवित्र नहीं रह सकते हो तो फिर यहाँ आते ही क्यों हो? कहते आऊंगा तभी तो पावन बनूंगा। मैं तो बिल्कुल अजामिल हूँ। यहाँ आने से हमारा कुछ तो सुधार होगा, नहीं तो हम कहाँ जाऊँ? रास्ता तो एक ही, तो ऐसे ऐसे भी आते हैं। कोई न कोई समय उनको भी चीर लग जाएगा। बाबा समझा, तुम्हारी ये इंद्र सभा है, इनमें अपवित्र कोई अंदर आ नहीं सकता। कोई को भी अंदर नहीं आना चाहिए। ये है होली है काफी होली टावर, पकिटाए नहीं सकते। जब पक्की गारंटी करें तब उनको अलाउ करें तो समझेंगे। ये ऐसी संस्था है जहाँ अपवित्र कोई जा नहीं सकते। ये किसकी सभा है? क्योंकि तुम बच्चे जानते हो भगवान ईश्वर सोमनाथ बबूलनाथ के पास तुम बैठे हो, वही पावन बनाने वाला है। अभी तो शुरुआत है, आखिरीन तो तुम्हारे पास बहुत आ जाएंगे। फिर कोई हंगामा आदि नहीं करेंगे। इस धर्म के जो होंगे वो झट निकल आएंगे। आर्य समाज की वास्तव में हिंदू सिर्फ अपना मठपंथ है, मठपंथ अलग कर दिया है, ये बताएं तो होते हैं सत्युग में, यहाँ सभी हिंदू है, वास्तव में हिंदू धर्म कोई होता नहीं है। ये तो हिंदुस्तान देश का नाम है, तो बच्चों को उठते बैठते चलते सुदर्शन चक्रधारी बनना है, स्टूडेंट को पढ़ाई की आग रहनी चाहिए, सारा ड्रामा का कुछ चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। देवताएं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है, तुम पक्के सुदर्शन चक्रधारी बन जाओगे। ज्यादा क्या फर्क रहा है देवताओं में और तुम्हारे में है? कुछ फर्क नहीं। क्यों? देवताएं पक्के सुदर्शन चक्रधारी नहीं कहे जाएंगे, तुम पक्के सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हो तो फिर तुम विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तो क्या अंतर हुआ देवताओं में तुम्हारे में, थोड़ा फर्क क्या है? हाँ, वो देवताएं कौन से हैं जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं? सत्युग में जो आठ जन्म होंगे वो देवताएं कोई सुदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे, और तुम जो संगम युग में बनते हो तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, ये देवताएं हैं फाइनल, तुम फाइनल तब होंगे जब तुम्हारी कर्मा की अवस्था। शिव बाबा तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं तो उनमें नॉलेज है ना, वो है तुमको बनाने वाला और तुम हो बनने वाले। तुम ब्राह्मण बन करके फिर ऐसा बनेंगे। अभी तुमको ये अलंकार कैसे दे? अभी तुम तो पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु कुल के बनते हो, सत्युग में विष्णु कुल होता है ना, तो ऐसा बनना चाहिए ना। कोई कोई की तो चलन ही ऐसी होती है जो बात मत पूछे, फिर वो क्या बनेंगे? सेंटर्स पर भी ऐसे ऐसे हैं जिनको रखना भी कायदे के विरुद्ध है, वो सच्चे ब्राह्मण तो नहीं ठहरे। वास्तव में भोजन बनाने वाले भी ऐसे चाहिए जो याद में रह करके भोजन बना दे। ब्रह्मा भोजन जिसकी इतनी महिमा है वो कोई अभी थोड़े ही तुमको मिलता है। क्या कहा? कब की बात? अभी माने तब, जब ये वाणी चलाई जा रही थी ब्रह्मा के मुख से, उस समय के लिए बताया कि ब्रह्मा भोजन अभी तुमको नहीं मिलता है। ब्रह्मा भोजन किसे कहें? जो याद में बनाया जाए और याद में खाया जाए, वो अभी तुमको नहीं मिलता है। क्यों? किसकी याद में बनाया जाता था उस समय? शिव बाबा की याद। शिव बाबा था, कहे कि सड़क की स्थापना करने वाला शिव बाबा था। जब एक्यूरेट याद ही नहीं थी तो ब्रह्मा भोजन कहाँ हुआ? इसलिए बोला ब्रह्मा भोजन जिसकी इतनी महिमा है, इतनी माना कितनी, कि जो भी खावे उसकी बुद्धि पवित्र हो जावे, वो कोई अभी तुमको नहीं मिलता है। आस्ते आस्ते आगे चलकर मिलेगा। जिस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत होगी उसी याद में भी तुम्हारी बहुत ताकत होगी। याद में रहे जब भोजन बनावे तब उसमें ताकत आएगी। पक्के हो जावेंगे तो फिर जल्दी जल्दी उन्नति को पावेंगे। कर्मातीत अवस्था को अब तक कोई ने पाया नहीं है। अभी देरी है, अभी वो अवस्था है कहाँ। अज्ञान काल में भी बहुत ऐसे परिवार होते हैं जो आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। तुमको तो ऐसा मीठा बनना है, ऐसा वैसा अक्षर बोलने से न बोलना अच्छा है। एक दृष्टांत देते हैं कि आपस में लड़ते हैं, लड़ते थे तो सन्यासी को बुलाया, उसने कहा मुख में मुलेरा डाल दो, वो कभी निकालना नहीं। मुख में पड़ा हुआ होगा तो रिस्पॉन्ड मिल न सकेगा। तो पांच विकारों को जीतना कोई मासी का घर छोड़े है। कोई कोई अपना अनुभव भी बतलाते हैं,
हमारे में बहुत क्रोध था, अभी आगे से बहुत कम हो गया। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। पहले तुम इन देवी देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो कि हम तो ऐसे बन रहे, बनेंगे तो नंबर वारी। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे उनका जरूर नाम बाबा बाला करेंगे, नाम भी लेंगे, बच्चों को रूहानी सर्विस करके रास्ता बताना चाहिए सभी को। सभी अंधे के औलाद अंधे हैं, तुम जानते हो हम भी अंधे थे, कुछ नहीं जानते थे, अभी हमको नॉलेज मिली। जो पूरी रीति धारण नहीं कर सकते हैं तो फिर कुछ न कुछ स्वभाव की खिचपिट होती रहती है। बाबा तो हर एक को जानते हैं, रूहानी सर्विस नहीं कर सकते हैं तो जरूर फिर डिस्टेंस करते हैं। बाप की याद में रह सर्विस करें तो हो बाप, एक बाप की याद दिलाते रहो, याद से ही बहुत बल मिलेगा। याद करने वाले को फिर चार्ट भी रखना होता है, चार्ट से सभी कुछ मालूम पड़ जाता है। बाप हर एक बच्चे को सावधान करते रहते हैं, स्वीट बाप और स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं, अभी थोड़े स्वीट विश्व है, अभी तो चारों तरफ मौत ही मौत लगा पड़ा है। ये भी ड्रामा का खेल अनेक बार का बना हुआ है, फिरता रहेगा, फिरता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिखिल रही बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद कर, गुड मॉर्निंग गुड नमस्ते। पच्चीस छह सतहत्तर के पेज नंबर 275 हेडिंग दिया है पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष दो बातें देख रहे हैं, हरेक आत्मा यथा योग्य तथा शक्ति ऑनेस्ट और होलीएस्ट कहाँ तक बनी। हरेक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रख करके चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबर वार हैं। जितना जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना ये प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई, ऐसे सच्ची दिल वाले दिल वाला बाप के दिल तक नसीन होते हैं, और दिल तक नसीन बच्चे ही राज्य तक नसीन होते हैं। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन के बिना किसी भी कार्य में न लगावे। अगर मनमत और परम प्रमाण समय को वाणी को कर्म को श्वास को संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हैं, स्वचिंतन की बजाय परचिंतन करते हैं, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, इसी प्रकार श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं तो उनको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। ये सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण की सेवा से दिए हैं, तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो ये अमानत में खयानत करना है। इसलिए सबसे बड़ी से बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हरेक अपने आप से पूछे कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने। ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व के प्रति शुभ भावना, सदा श्रेष्ठ कामना। चौथी बात ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होगा। पांचवी बात ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव, हर संकल्प में बाप को साथ और सहयोग की हाथ का अनुभव। छठी बात, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव। और सातवीं बात, ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है और जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो हैं और जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, बताने की क्या जरूरत, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े से बड़ा सहज चरती कला का साधन है। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति यही है। क्या? बाप को अपना पूरा पोता मिल देना, तो स्वयं को स्पष्ट करना, सात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना, स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन करते क्या हो, कुछ बातें बताते हैं, कुछ बातें छिपाई लेते हैं, और बताते भी हैं तो कोई सेल्वेशन की प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर बताते हैं। चतुराई से अपना केस सज धज करके मनमत और पनमत के प्लान अच्छी तरह से बना करके बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। भोला नाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है? बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाजी का पाठ पढ़ तो लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना दोनों बातों में फर्क हो जाता है। बनना चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं। जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं, है जन्म जन्मांतर की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी होकर के अपने आप को सहना होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं। बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदाकाल के अकल्याण के निमित्त बन रहे। बाप दादा क्या कहेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं। और आठवीं बात, ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन नहीं हो, हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय में संशय आ गया, और क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन में आ गया, उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बातों में भी हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बना करके खुदा को दोषी बना देते हैं कि भगवान बाप ने ही तो कहा था कि 10 वर्ष में स्थापना हो जाएगी और विनाश हो जाएगा। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का अभ्यास, बेहद के सन्यासियों का जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी है क्या? सुलोगन में भी यही लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो, समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध होता है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है तो ऑनेस्ट बच्चों के ये लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट, समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, ऐसे सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूत बनाने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद करो ना। पार्टी स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी, श्रेष्ठ पार्थधारी आत्माओं का यादगार भी विजय माला के रूप में है। सिर्फ माला नहीं कहते लेकिन विजय माला। इससे क्या सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है, इसलिए विजय माला गाई हुई है। तो ऐसे विजयी हो या कभी माला में पिरोए जाते हो और कभी निकल जाते हो, किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है वो जानते हो? हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते। जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती हैं उनको समय पर यूज नहीं करते हो, इस कारण समय पर हार खा लेते हो। युक्तियां हैं लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति में आती है, ऐसा होता तो हम ऐसे करते। तो चेकिंग की कमजोरी होने के कारण चेंज भी नहीं कर सकते। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। दिव्य बुद्धि नहीं तो रंग को भी राइट समझ लेते। अगर कोई यंत्र ठीक नहीं है तो रिजल्ट जल्दी नहीं निकलेगा, परिणाम उल्टा निकलेगा। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे, हार के बदले जीत हो जाएगी। सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार्ब के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने, ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करते हो। कैसे फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करना है? जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने। चारों ओर की सेवा कहाँ? सूक्ष्म बतन में है? सूक्ष्म बतन में किसकी सेवा करेंगे? जरूर साकार शक्ति पर सेवा कर रहे हैं ना? तो बच्चे भी ऐसे अनुभव करें, बाप दादा दोनों के समान बनना है ना? दोनों से इसलिए है ना? कौन हुए बाप दादा है? बाप कौन और दादा कौन? बाप शिव, शिव के समान बनना है बिंदु। फिर बापत नहीं आना है 5000 वर्ष तक है? राम वाली आत्मा। और दादा, बड़े भाई को दादा कहा जाता है। प्रजापिता का जो पहला बच्चा है, पहला पत्ता, कृष्ण की सोच। तो राम कृष्ण दोनों के समान बनना है ना? दोनों से स्नेह है ना? स्नेह का सबूत है समान बनना। जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेगा वैसे ही बोलेगा ना? स्नेह अर्थात संस्कार मिलन, और संस्कार मिलन के आधार पर ही स्नेह भी होता है। तो किसके समान बनना है? किससे संस्कार मिलाना है? बाप और दादा से। और संस्कार मिलन के आधार पर स्नेह होता रहेगा। संस्कार नहीं मिलते हैं तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो बनेगा नहीं। तो दोनों बाप के स्नेही हो। कौन कौन दोनों बाप? लाइट रूप आत्मा स्वरूप से सिद्ध होना और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता, दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े। तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो, फरिश्ता बनकर चलते हो कि पांच तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह है अर्थात धरणी अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब आकारी हो जाएंगे तो ये देह आकर्षित नहीं करेगी। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना, तो दोनों ही लाइट हैं। वो आकारी रूप में वो निराकारी रूप में, तो दोनों समान होना, समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। अगर समान नहीं तो कभी हार होगी कभी जीत होगी, इसी हलचल में चलते रहेंगे। अचल बनने का साधन है समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी से। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए दिखाई देते, फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। पहाड़ी अर्थात ऊंची स्थिति, फरिश्ता अर्थात ऊंची स्थिति पर रहने वाला। कुछ भी इस दुनिया में होता रहे लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी होकर के सब समय देखता रहेगा और सकाश देता रहेगा। सकाश भी देने है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त है। साक्षी होते देखते सकाश अर्थात सहयोग देना, इससे उतर करके सकाश नहीं दी जाती है। सकाश देना ही निभाना है, निभाना अर्थात कल्याण की सकाश देना है। लेकिन उनकी तेज परिस्थित होकर के सकाश देना है, इस बात की विशेष अटेंशन हो। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की सकाश देना। सदा ही किसी भी प्रकार के वातावरण की स्थिति में नहीं आवेगा। अगर देख आता है तो समझना चाहिए साक्षी पद की स्थिति पर स्थित नहीं है, कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है। जहाँ साक्षी बनना चाहिए वहाँ साथी बन जाते हैं तो सेक लग जाता है। क्या कहा, जहाँ साक्षी होकर के देखना चाहिए वहाँ उस कार्य में साथी बन जाते हैं तो सेक लग जाता है। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बनकर के प्रख्यात होंगे। आजकल की लहर कौन सी है, महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश था कि अपने हम जिन्स की अपवित्रता से पवित्रता में लाना है, तो पहला जोश याद है ना कि हम जिन्स को सहयोग देना है, कैसी लगन थी, सबको छुड़ाने की भी लगन थी और शक्ति भरने की भी लगन थी। आज में जोश था कि हम जिन्स को छुड़ाना ही है और बचाना ही है। अभी ऐसी लहर है, चाहे चलते चलते कमजोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं हो जो कि बंधन युक्त हैं, ऐसे को बंधन मुक्त बनाए कितना जोश हो। यह ड्रामा कहकर के छोड़ देते हो, वर्तमान समय आप लोगों का पार्ट कौन सा है, वरदानी का महादानी का कल्याणकारी का पार्ट है ना। ड्रामा तो है लेकिन ड्रामा में आपका पार्ट क्या है। तो ये लहर जरूर फैलनी चाहिए, जैसे फायर ब्रिगेडियर को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकता, तो ऐसी लहर होनी चाहिए। आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो जाए। अगर आप लोग ड्रामा कह करके छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापन हो रही है तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा। नॉलेज फुल होने के कारण ये नॉलेज है कि ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है। तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए, कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। आपका शुभ चिंतन उन्हों की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। आप लोग ही छोड़ देंगे तो वो तो गए काम से, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पार्ट है, बैक टू बैक बोन है। शक्तियों को कौन सी स्थिति में स्थित रहना चाहिए? जैसे देवियों के चित्र में दो विशेषताएं दिखाती हैं, आंखों में भावना और हाथों से शस्त्रधारी, अर्थात असुरों का संहार करने वाली भावना, अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना भी। संहार करना अर्थात उनके आसुरी संस्कारों को खत्म करने का प्लान भी हो और उनके ऊपर रहम भी हो, लाकुल भी हो और लकुल भी, दोनों का बैलेंस, दोनों साथ साथ हो। ये जो कमजोरी की लहर है ये ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं, कमजोरी बहुत समय की होती है लेकिन अभी छिप नहीं सकती, पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती, अभी तो समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कोई भी कमजोरी होगी तो छिप नहीं सकेगी। राजा बनने वाला, प्रजापद पाने वाला, कम पद पाने वाला, सेवाधारी बनने वाला, अभी सभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वो कैसे होगा? तो ये साक्षात्कार कराए रहे हैं, ये बुद्धि का साक्षात्कार है। बाकी ऐसे नहीं है कि कमजोरी नहीं थी अब आ गई है, लेकिन अभी कमजोरी को प्रत्यक्ष होने का प्रसिद्ध रूप में चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय सारी बीमारी निकलती है, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हरेक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगी। कबते 76 संपूर्णता वर्त में, संपूर्णता वर्त में कोई संपूर्ण स्टेज पर है तो कोई नंबर वार कमजोरी की स्टेज पर है, जिसकी जो जितनी जैसी कमजोरियां हैं वो उस समय से प्रत्यक्ष होना शुरू हो गई। अभी तो एक लहर देखी है, अभी और भी कई लहरें देखेंगे, कहेगी कमजोरियों के प्रत्यक्ष होने की। अभी अति में जाना जरूर है, अति होगी आएगी कमजोरियों के प्रत्यक्ष होने की, तो क्या होगा? अति होगी तो अंत हो जाएगा। जो भी अंदर कमजोरियां भरी हुई हैं वो अंदर छिप नहीं सकती है। तो ब्राह्मण परिवार में कोई का कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। मान लो कोई ने अपना पोता मेरे बाप से छुपा लिया तो वो छुपेगा नहीं, और ही जाति प्रत्यक्ष होगा, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष जरूर आएंगे। लेकिन आपकी भावना इन सबका भी कल्याण हो जाए। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण हो। लहरें तो और भी आएंगी, एक लहर खत्म होगी दूसरी आएगी, क्या कमजोरियों की एक लहर समाप्त होगी और दूसरी लहर शुरू हो जाएगी। ये सब मनोरंजन के बाइप्रोडक्ट हैं और सबके पद भी स्पष्ट हो रहे हैं और ये होते रहेंगे। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए ना, एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे और दूसरी तरफ थकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होते जाएंगे। कौन, नए या पुराने? पुराने पुराने चलते चलते थक गए, रुक गए, वो भी प्रसिद्ध। और तीसरी तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही हुई है वो भी प्रत्यक्ष होंगी। नथिंग न्यू, फिर भी रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ साथ। अच्छा तो
ये बाइक नंबर के रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं जब आता हूँ तो किसको भी पता नहीं पड़ता है,
क्योंकि बात है गुप्त। और मनुष्य आत्मा जब प्रवेश करती है तो सबको पता पड़ जाता है, क्योंकि झटका लगेगा, चेहरा मोहरा बदल जाएगा, दृष्टि व्यक्ति बदल जाएगी, तो सबको पता पड़ जाता है मनुष्य आत्मा की प्रवेशता का। लेकिन बाप की प्रवेशता में क्या विशेषता है, किसी को पता नहीं पड़ता है, क्योंकि बाप है गुप्त और मनुष्य आत्मा तो शरीर में आके प्रत्यक्ष हो जाती है। बाप गुप्त पार्टदारी तो क्या साबित हुआ, गुलजार दादी में पता पड़ता है कि नहीं, पता पड़ जाता है तो क्या साबित हुआ कि उनमें गुप्त बाप की प्रवेशता नहीं होती है। किसकी प्रवेशता होती है, मनुष्य आत्मा की प्रवेशता है, माने ब्रह्मा की प्रवेशता होती है, लेकिन शिव बाबा की प्रवेशता नहीं होती, रूहानी बाप की प्रवेशता नहीं होती। टाइटलधारी यजमानी बाप ब्रह्मा प्रवेश करता है, ऐसे तो बाप भी गुप्त है, तुम बच्चे भी गुप्त हो, घर में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता है। किसी तारीख निकल ही नहीं सकती, किसका प्रवेश किया, ऐसे ही सुप्रीम सोल ने जब 36 में प्रवेश किया या ब्रह्मा में 47-48 में प्रवेश किया तो किसी तारीख का पता चल सकता है किसी को, क्या किसका प्रवेश किया नहीं पता पड़ सकता। जब गर्भ से बाहर निकलते हैं तो वो किसी तारीख निकालते हैं, तो ये भी है बेहद का ज्ञान गर्भ है। जहाँ से पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती है तो बाप की प्रवेशता की तिथि तारीख का पता नहीं पड़ता है, प्रवेश कब किया, कब रथ में पधारे मालूम नहीं पड़ता है। उस समय कोई को देखते थे तो नशे में आ जाते थे, समझते थे कोई की प्रवेशता है, वह हमारे में ताकत आ गई है, ताकत भी कहां से आई, हमने कोई खास जप तप तो किया नहीं, इसको कहा जाता है गुप्त, किसी तारीख को कुछ भी नहीं, और सभी मनुष्य मात्र की किसी तारीख है। शंकर तो आता ही नहीं कहां है, साकार कहां नहीं आता है, साकारी स्टेज में शंकर तो आता ही नहीं है, क्या वो सूक्ष्म पतन में सदैव ही है, वह कब से है, सूक्ष्म पतन की स्थापना कब होती है ये भी कोई कहने लगे, बल बताया है 40 वर्ष के लिए सूक्ष्म पतन रचते हैं, लेकिन कब से रचते हैं वो किसी को पता नहीं। मुख्य बात है मनमना भव जी, बाप कहते हैं आत्मा तुम मुझे अपने बाप को बुलाते हो ना, यहाँ आकर के हम पतितों को पावन बनाओ, ड्रामा प्लान अनुसार जब आना होता है तो चेंज जरूर होती है, सत्युग से लेकर जो कुछ पास हुआ वो रिपीट करेंगे, सेकंड सेकंड पास होता जाता है, ड्रामा चक्र चलता रहता है, कहते हैं सत्यु को पास हुआ, देखा तो नहीं, बाप ने समझाया तुमने ये पास किया है, तुम ही पहले पहले हमसे बिछड़े हो, तो इस पर विचार करना होता है, किस पर, किस बात पर, कि तुम ही पहले पहले हमसे बिछड़े हो, कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं, तो फिर हू बहू लेने पड़ेंगे ना। अर्थात सुख और दुख का पार्ट बजाना होगा। सुख दुख का खेल कोई बड़ी बात नहीं है। सत्युग नई दुनिया में है बहुत सुख, कलयुग पुरानी दुनिया में है दुख। मकान पुराना होता है तो कहाँ से छत बहेगी, कहाँ से कुछ होगा, उड़ना रहता है, इनकी मरम्मत करानी है, यह करना है। बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है अब ये मकान रहने लायक नहीं है। नई दुनिया को तो ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम नई दुनिया में चलते हो, हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है। ये भी अभी तुम बच्चों के ख्याल में है, और कोई तो समझते ही नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र गीता भागवत रामायण आदि सुनाते रहते, इतने बिजी रहते। तुम हम भी अपने अपने धंधे में बिजी थे ना। किसने कहा है? हाँ, तुम हम भी। तो कब की बात बताई? 36 से पहले की बात। 10 वर्ष से रहने वाला साथ में, इसके लिए वाणी में बोला है, बाबा के साथ 10 वर्ष से रहता था। कौन धंधे में साथी कौन था? भागीदार, लौकिक धंधे का भागीदार। तो तुम हम भी अपने अपने धंधे में बिजी थे ना, अपने अपने धंधे में। इसका मतलब उस समय साझीदार थे या उससे भी पहले उनका अलग अलग धंधा था? धंधा तो भले एक ही था लेकिन पहले अलग अलग थे और बाद में साझीदार बन गए। आदि बेहद के बाप ने हम बच्चों को कितना समझाया है। बाप समझाते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी नई दुनिया में चलना है। ऐसे भी नहीं सभी चलेंगे, सभी मुक्ति धाम में जाए बैठ जाए फिर तो प्रलय हो जाए क्या? मुक्ति धाम में सब बैठ जाएंगे क्या? बैठना कैसे होता है? तो शरीर से बैठने की बात है। तो सब आत्माएं जाकर के शरीर से मुक्ति धाम में नहीं बैठेंगी, कुछ न कुछ बीज रूप आत्माएं इस धरती पर रहेंगी। सब बैठ जाए फिर तो प्रलय हो जाए। मन प्रकट रूप से लय मन लीन हो जाए सृष्टि, लेकिन सृष्टि पूरी खलास कभी नहीं होती है। तो ये कायदा नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र है, ये है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का कल्याणकारी संगम युग। अभी ये पुरानी दुनिया चेंज होती है, बाकी सभी शांति धाम में चले जाएंगे। क्या कहा? बाकी माने कितने है? पुरानी दुनिया जो चेंज होगी, पुरानी दुनिया के पुराने पन को जो नहीं छोड़ेंगे, वो तो सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। और बाप जिस नई दुनिया की परंपराओं को बताए रहे हैं, उस तो दुनिया की नई परंपराओं को, नई धारणाओं को जो धारण करेंगे, वो इस सृष्टि पर रहेंगे, नई दुनिया का फाउंडेशन लगाएंगे। बाकी सभी शांति धाम चले जाएंगे। वहां तो सुख दुख की भाषण की बात ही नहीं। ये भी गायन है यज्ञ में विघ्न पड़े, वो बढ़ते रहते हैं। कलप के बाद भी ये विघ्न पड़ेंगे। अभी तुम तो पक्के हो गए। स्थापना विनाश ये भी कोई छोटा काम थोड़ी है। विघ्न किस बात में पड़ती है? मूल बात कौन सी है जिसके लिए विघ्न पड़ते हैं? हाँ, काम महाशत्रु है तो इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही घिटपिट होती है। गालियां भी गीता सुनाने वालों को दी है। बाकी शास्त्रों में तो सभी है मनुष्यों की बनाई हुई बातें, वो सभी भक्ति मार के ही शास्त्र पढ़ते हैं। अभी तुम समझते हो वो सभी है झूठ। झूठ के कारण पाप बढ़ते जाते। सतो प्रधान से तत्व तमो प्रधान तो बनना ही है, किसी भी नीचे उतरनी होती है, दुनिया पुरानी होनी है, ये सभी बातें तुम बच्चे समझते हो, तो इनका फिर सिमरण भी होना चाहिए। तो दूसरों को भी समझाना है, पढ़ करके टीचर बनते हैं, जरूर नॉलेज बुद्धि में है तब तो पास होकर टीचर बनते हैं। तो टीचर से जो सीख करके होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है, ये टीचर सिखाने लायक है। तुम भी टीचर बनते हो ना, तो पास कौन करता है, है? ये भी रूहानी गवर्नमेंट है, बाप ने तुमको टीचर बनाया है। क्या कहा, दीदी दादियों दादाओं ने तुमको टीचर नहीं बनाया, वो देहधारी गुरु तुमको टीचर नहीं बनाते हैं। ये है रूहानी गवर्नमेंट, रूहानी बाप ही सुप्रीम टीचर है जो तुमको टीचर बनाते हैं। एक टीचर क्या कर सकता है, तुम सभी रूहानी टीचर तो हो, तो तुम्हारी बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। इस नॉलेज से मनुष्य समझते हैं, ज्ञान तो इनको बरोबर एक्यूरेट है, मनुष्य देवता बनने का ये ज्ञान है, तो टीचर का मान हुआ ना। आगे चल करके देखना क्या होता है, क्या होगा, है? कोई किसी की योग्यता का मान करे या न करे, लेकिन बाप की नजर से कोई की पढ़ाई छिप नहीं सकती। बाप तो सब बच्चों को देखता है, तो आगे चल करके क्या क्या होता है ये देखना है। माया भी पुणे के ही पिछाड़ी पड़ेगी, मुझेंगे पता नहीं शास्त्र राइट है या ये राइट है, कौन मुझेंगे, दुनिया वाले ब्राह्मणों की दुनिया के शास्त्र, बाकी तो शास्त्र हैं, बाकी दुनिया में भी शास्त्र हैं, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र, धर्म पिताएं तो कोई शास्त्र लिखते नहीं, ऐसे ही परमात्मा भी कोई शास्त्र बनाता नहीं है। तो ब्राह्मणों की दुनिया के जो शास्त्रकार हैं, माया भी उनके पिछाड़ी आगे चल के पड़ेगी, मुझेंगे पता नहीं ये शास्त्र राइट है या ये राइट है, कौन, बाप के बच्चे। अभी तुम बच्चों को राइट समझते हैं तब तो माथा झुकाते हैं। माथा कैसे झुकाया जाता है, माथा झुकाना माने बुद्धि झुकाना, कोई जवाब नहीं दे सकती, मानते हैं कि तुम्हारी बात राइट है, लाइट भी देखते हैं। जितना जितना तुम बाप को याद करेंगे तो लाइट तुम्हारे में आती रहेगी। माथा कौन झुकाते हैं, किसी चीज को माथा झुकाते हैं, प्यारिटी को ही माथा झुकाया जाता है, प्यारिटी की ही पूजा होती है। तो जब लाइट देखते हैं, लाइट मन ज्ञान की रोशनी, तो माथा झुकाते हैं। तुम बाप को जितना जितना याद करेंगे तो तुम्हारे में लाइट आती रहेगी और मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा। इस बात का, तुम्हारी प्योरिटी का, क्योंकि आत्मा याद से ही पवित्र बनेगी, तो किसको साक्षात्कार भी हो सकता है, बाप भी मददगार बैठा हुआ है, वो भी प्रवेश करेगा क्या? बाप की याद करते करते तुम्हारे में जो ज्ञान की लाइट आएगी, तो बाप भी तुम्हारा मददगार बन करके बैठा है, वो भी प्रवेश करेगा। बाप तो हमेशा बच्चों का मददगार है, पढ़ाई में भी नंबर वार तो होते ही, हर एक को अपनी बुद्धि से समझना चाहिए, कितनी धारणा होती है, ये है ज्ञान धर्म। अगर धन किसी को देते नहीं है तो कोई मानेगा नहीं कि इनके पास धन है, तो दूसरों का भी कल्याण करना है, धन ले करेंगे फिर दान करेंगे तो महादान कहेंगे, महादानी महारथी महावीर बात तो एक ही है, सभी एक जैसे, तो महावीर महादानी बन नहीं सकते, तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से बैठ मार माथा मारना पड़ता है, वो लोग अखबारों द्वारा उल्टा सुनकर के चमकते हैं, फिर तुम्हारे पास आकर के सुनते हैं, तो कहते हैं यहाँ तो फर्क की बात है।
कौन सी अखबार है यहाँ? कौन सी अखबार है जिनमें उल्टा पुलटा लिख देते मनुष्यों के बनाए हुए कागज है? उल्टा पुलटा चमकते हैं उनको सुनकर के तो तुम्हारे पास आते तो कहते यहाँ तो फर्क की बात है। एक एक को ठीक करने में कितनी मेहनत लगती है। तुम्हारे में भी नंबर वार कोई महारथी है, कोई दौड़ सवार है, कोई प्यादे हैं, ये भी जाना बताए। ये तो समझते हो आखिरी सीख तो हमारी है ही। इतना अंदाज कलब पहले बना था वो जरूर बना। उस साथ तो बच्चों को करना ही पड़ता, बुराई भी देते रहते, ऐसे ऐसे समझाने की कोशिश करो। पहले पहले तो शिव बाबा के मंदिरों में जाकर के सर्विस करो। क्या कहा? हाँ, यानी बाहर की दुनिया में चले जाओ। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर कौन से? जो भी शिव बाबा को याद करने वाले हैं, भले जड़ चित्र को याद करते हैं, जड़ ज्योति बिंदु को याद करते हैं, तो वो है शिव बाबा के मंदिर। उन मंदिरों में जाकर के सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो ये कौन है, कौन?